ओम शांति। अव्यक्त वाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। सातवां पॉइंट है बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो। हरेक के मुखड़े से, नयनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नयनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिष बनकर हरेक को परख सकते हो। नयनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना यह भी ज्योतिष विद्या है। बाबा कहते हैं बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो। इस संगम युग में बाबा ज्ञान और योग की ज्योतिषी सिखाने आए हैं। सबसे पहले इस ज्ञान और योग की ज्योतिषी से अपने आप को देखना है, खुद को देखना है। बाबा ज्ञान दे रहा है खुद को देखने का, योग सिखला रहा है खुद से बाबा से लगाने का। बच्चे अपने को चेक करें कि अभी तक इतने वर्षों में हमने इस ज्ञान और योग से खुद को देखा है क्या, और अगर देखा है तो कितना देखा है। बाबा कहते हैं यहां तुम आए हो स्वयं की खोज में, खुद को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। तुम किसी और की खोज में यहां नहीं आए हो, क्योंकि अभी तक तुमने दूसरों की खोज की, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अभी स्वयं की खोज करो, इस ज्ञान को स्वयं की खोज में इस्तेमाल करो, क्योंकि यह दूसरों की खोज का ज्ञान नहीं है। अगर अभी भी तुम यहां दूसरों को खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो यह ज्ञान योग तुम्हारे काम का नहीं है। दूसरे मना ऐसे नहीं समझिए कि बाबा किसी दूसरी आत्मा की बात कर रहा है। दूसरे मना जो भी ज्ञान तुम यहां आके लेना चाहते हो, विश्व का ज्ञान, इस आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान, यह ज्ञान यहां नहीं मिलता। तुम स्वयं को छोड़कर जो भी पाना चाहते हो, जो भी समझना चाहते हो, वह ज्ञान यहां नहीं मिलता। इसलिए अगर तुम दूसरों को पाना चाहते हो स्वयं को छोड़कर, तो इस ज्ञान से रास्ता बदल दो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। यह रास्ता है स्वयं का। यात्रा शुरू होती है खुद से और समाप्त होती है परमात्मा के ऊपर, बाबा के ऊपर। ज्ञान में आने के बाद बहुत से बच्चे बाह्यमुखी बहुत बन चुके हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान बहुत ज्यादा है। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, इसमें बहुत व्यस्त है। दूसरों को सिखाने में बहुत व्यस्त है, दूसरों को गाइड करने में बहुत व्यस्त है। मानो वो भटक गए हैं, उन्हें सही राह पर लाना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान में चलने वाले सभी बाबा के बच्चे, फिर वह ज्ञान सुनने वाला बच्चा हो या सुनाने वाला बच्चा हो, सभी इस बात को अपनी बुद्धि में ध्यान से अंडरलाइन करके रखना कि यहाँ तुम आए हो अपनी खोज में, खुद को पाने के लिए, न कि ज्ञान देने के लिए, न कि ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान देना और लेना बस एक कारण है खुद को खोजने का। कोई ज्ञान दे रहा है निमित्त बन के, बाबा ही दिला रहा है उसके द्वारा। कोई निमित्त बन के ले रहा है, बाबा ही ले रहा है उसके द्वारा, उसके कल्याण के लिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो इतनी लंबी यात्रा में तुमने तुम्हें कहाँ तक खोजा है और तुम अपने आप को कितना पा चुके हो, चेक करो। तो यह जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी है, बाबा कहते हैं उनसे क्या देखते हो, क्या अपने आप को देखा है आपने इस ज्ञान योग की ज्योतिषी से, चेक करो। सारे दिन भर में तुम अपने आप को कितना देखते हो, इस दुनिया की रीत है। दुनिया के पास ज्ञान आने के बाद उसी ज्ञान से वो पहले दूसरों को देखता है और जज करना शुरू करता है, ये ऐसे है, वो वैसे है, ऐसे शुरुआत होती है। बहुत बार जिसके पास जो ज्ञान है उसका वो खुद इस्तेमाल कभी नहीं करता। कोई कोई एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, जो पूरे जीवन भर में सबकी जन्मपत्री बनाते हैं लेकिन कभी अपनी जन्मपत्री बनाते ही नहीं। अपने जीवन के बारे में जानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो मतलब क्या उस ज्ञान का? जीवन भर दूसरों को शिक्षा देते रहे, सिखाते रहे, खुद कभी नहीं सीखे, बस देते रहे। ज्ञान देने वाला जो कोई भी है आपको, जिस प्रकार का वो ज्ञान आपको दे रहा है, उसी क्षण आप उससे सवाल पूछो कि यह ज्ञान आपने अपनी धारणा में कितना लाया है। क्योंकि अगर उसने अपनी धारणा में लाया होगा तो ही वह ज्ञान आपके काम का है, वरना वह ज्ञान आपके ऊपर नहीं चलेगा। आपको उससे ताकत नहीं मिलेगी। तो बच्चों के लिए समझ की बात है कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है, जो योग सिखला रहा है, उसका प्रयोग खुद के ऊपर कितना किया है, चेक कीजिए। हरेक के मुखड़े से, नयनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है बाबा कहते हैं, हरेक के मुखड़े से, नयनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है कि आप कितना आत्मिक स्थिति में हो, कितना बाप के साथ कंबाइंड रहकर हर कर्म कर रहे हो, कितनी रूहानियत आपके अंदर है, यह मालूम पड़ता है। बहुत बार हम हमारा इंट्रोडक्शन हमारे बैच से देते हैं, हमारे वर्षों से देते हैं, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं, आपके नयन बताएं, आपका मुखड़ा बताएं, आपके मस्तक से पता चले कि आपके अंदर दिव्यता क्या है। जिस दिव्यता को अपने आप को प्रूफ करना पड़े कि मैं दिव्य हूं, उस दिव्यता का मतलब क्या है? किसी देश के प्रधानमंत्री को अगर बताना पड़े कि मैं प्रधानमंत्री हूं फलाने देश का, तो उनका प्रधानमंत्री होने का मतलब क्या है? इतने वर्षों से पता होना चाहिए आपके वाइब्रेशन से, आपके दृष्टि से, आपके मुखड़े से, मस्तक से सामने वाला पहचान जाए कि कोई दिव्य आत्मा है, इनकी दिव्यता बड़ी लग रही है। आत्मिक स्थिति में चलने वाले आत्मा है, बाप समान आत्मा है, बताना ना पड़े। देखिए, सफेद वस्त्र पहनने से हर कोई जान जाता है कि आप आध्यात्मिक हो। बैच लगाने से किसी भी संस्था का हर कोई जान जाता है कि आप आध्यात्मिक हो। बाबा कहते हैं, अगर ये हम बदल दें तो क्या आपसे आध्यात्मिकता की फीलिंग आएगी? रंगीन कपड़े पहने, बैच ना लगाए, तो आपसे आध्यात्मिकता की फीलिंग आएगी क्या? दुनिया को, अपने को चेक करो। अगर नहीं आएगी तो आपने अध्यात्म नहीं सीखा। आनी चाहिए। कैसे आएगी? आपके दृष्टि से, आपकी वाणी से, आपके कर्मों से। अपने आप दूसरों को लगेगा कि जरूर कोई आध्यात्मिक लग रहे हैं, वाणी बड़ी मीठी है, दृष्टि बड़ी शीतल है, बड़े प्यार से स्नेह से व्यवहार करते हैं, हमने देखा उनको, ऑब्जर्व किया, बहुत स्नेह है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, रंगीन कपड़ों वालों के कर्म, उनकी वाणी, उनकी दृष्टि सब दिव्य होता है, और उससे विपरीत, कभी कभी विपरीत हो जाता है। कोई कोई है ऐसे लोग, कोई कोई आत्माएं जो ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन वह दिव्यता नहीं आई है। सभी अपने को चेक कीजिए। आप जिस लौकिक अलौकिक परिवार के साथ रहते हो, उनको आपसे कितनी दिव्यता महसूस होती है? कर्मों से, वाणी से, दृष्टि से चेक कीजिए। अगर नहीं होती है तो वो आपके नाम से और बाप के नाम से गाली देंगे कि आप आध्यात्मिक राह पर चलकर कर क्या रहे हो। ब्राह्मणों में तो अलग बात है, कोई कोई ब्राह्मणों का संगठन है जिसमें दिव्यता ना भी महसूस हो फिर भी कहेंगे कि बड़े अच्छे हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे मत कहो उनको, आप उनको भटका रहे हो। उनकी सच्चाई उनके सामने रखो कि आपके ये कर्म अपने ब्राह्मण धर्म को शोभा नहीं दे रहे हैं, बाबा के परिवार को शोभा नहीं दे रहे हैं। आपकी इस प्रकार की वाणी जिससे सामने वाले दुखी हो रहे हैं, तो इससे बाबा का नाम बदनाम हो रहा है, यह शोभा नहीं दे रहा है। आपकी यह दृष्टि जिससे कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि इनकी दृष्टि से हमें बेचैनी होती है, आपकी वृत्ति, आपसे निकलने वाले वाइब्रेशंस जिसके कारण लोग बाबा के लिए पूछ रहे हैं कि पता नहीं यह ज्ञान में चलकर क्या कर रहे हैं, तो यह बताओ उन्हें। आपका कर्तव्य है परिवार के हर सदस्य को सही राह पर चलाना। कहते हो ना कि यह एक परिवार है, तो कम से कम जो ब्राह्मण बच्चे हैं जिनके अंदर ड्रामा प्लान अनुसार ये पार्ट बज रहा है, उनको आप जागरूक करो कि आपकी वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म कैसे हैं। सभी चेक करें, क्या आप जहां रहते हो, भल कोई घर में रहता है, कोई सेंटर में रहता है, कोई मधुबन में रहता है, लेकिन आपसे आप जहां रहते हो वहां रहने वालों को सुख मिलता है क्या, कंफर्ट मिलता है क्या, उन्हें अच्छी फीलिंग आती है क्या, चेक कीजिए। आपसे बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की दृष्टि महसूस होती है क्या, बाबा के बोल महसूस होते हैं क्या, चेक कीजिए। कभी अपने को चेक करते रहिए कि बाबा की शिक्षाएं क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्या बाबा की शिक्षाओं अनुसार हमसे सबको सुख और शांति मिल रही है क्या, चेक करते रहिए। कोई अपने जॉब बिजनेस में चेक करे, जहां भी आप जाते हो, कोई अपने प्रोफेशन में चेक करे, कोई पढ़ाई में चेक करे कि हमसे आसपास वालों को सुख मिलता है क्या, चेक करें। अगर नहीं मिलता तो योग बढ़ाना चाहिए, आत्मिक स्थिति बढ़ानी चाहिए, पढ़ाई बढ़ानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, हरेक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है कि आप कहां तक पहुंचे हैं। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। देखिए, बाहर भी ज्योतिषी आंखों से और मस्तक की रेखाओं से पहचानते हैं कि किसके जीवन में राजयोग है, किसके जीवन में उससे विपरीत है, कौन बहुत बड़ा बनने वाला है और कौन ऐसे ही रहने वाला है, नैनों से और मस्तक से पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं, कभी अपना मस्तक देखा है आपने? मस्तक देखना मना अपने आप को देखना आत्मा रूप में। कभी अपने आप को नैनों में देखा है, अपनी ही नैनों में, चेक कीजिए। जैसे आप दूसरों को देखते हैं वैसे दुनिया भी आपको देखती है। तो दुनिया किस नजर से आपको देखती है, कभी इस बारे में आपने सोचा है क्या? कभी विचार किया है कि आपकी माता आपको किस नजर से देखती है, आपके पिता आपको किस नजर से, किस दृष्टि से देखते हैं, आपके युगल, आपके बच्चे, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके संबंध संपर्क वाले किस नजर से आपको देखते हैं, कभी आपने महसूस करने की कोशिश की है? नजर माना आपका जैसे व्यवहार होगा, आपके जैसे कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति होगी, उसी नजर से वो आपको देखेंगे। यह हुआ लौकिक। फिर आपने कभी सोचा है, ब्राह्मण परिवार में जिस सेंटर में हम जाते हैं, जो परिवार है वहां का छोटा, बड़ा परिवार तो बाबा का विश्व का मधुबन से है, तो एक सेंटर से सभी बच्चे अगर 200 है तो वो किस दृष्टि से आपको देखते हैं, कभी सोचा है आपने? हर किसी ने कि हर किसी की दृष्टि आपकी ओर कैसे होती है, क्योंकि सभी आपको रोज देखते हैं। तो रोज देखते हैं तो कुछ तो दृष्टि होगी कि ये ज्ञान में बहुत अच्छे चलने वाले हैं, हाजी वाले हैं, योग बहुत अच्छा है इनका, ये धारणा वाले हैं, ऊंचे सेवाधारी हैं, बाबा के सच्चे बच्चे हैं, कोई तो दृष्टि होगी। या बस आते हैं, कभी हमने देखा नहीं इनके मुख से ज्ञान की बातें करते हुए, कभी हमें यह दिखे नहीं योग करते हुए, धारणा का तो पता नहीं, सेवा में कभी हमने देखा नहीं इनको, कौन सी दृष्टि है आपकी ओर? चेक कीजिए, समझ की बात है बच्चों के लिए। तो पहले खुद को खुद की नजर से देखो। आप जिस नजर से दुनिया को देखते हो उसी ही नजर से दुनिया आपको देखेगी, इस बात को ध्यान में रखना। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, बच्चे याद नहीं रखते हैं इस चीज को, समझ की बात है। अपनी दृष्टि को चेक करो, जैसे आपकी दृष्टि है उसी अनुसार आपकी सृष्टि होगी। आपकी सृष्टि माना क्या? आपके आसपास के सभी, फिर मनुष्य आत्माएं हो, जीव हो, प्रकृति हो, यह आपकी सृष्टि है। तो वो भी आपको उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से आप उन्हें देखते हो, समझ की बात है बच्चों के लिए। तो इसमें भी विशेष मस्तक और नयनों से मालूम पड़ता है। अपने नयनों को चेक करो, चेक करते रहो। आप ज्योतिष बनकर हरेक को परख सकते हो? बाबा कहते हैं, क्या आप ज्योतिष बनकर हरेक को परख सकते हो जो आपके आसपास हैं? परखना मना जज करना नहीं है ना, इस बात को उल्टा मत समझना कि परखना मना जज करना। हमेशा हम यही समझते हैं कि परखना मना जज करना, परखना मना समझना, यह भी एक समझने की बात है। पहले इसी ज्योतिष विद्या से, ज्ञान योग की ज्योतिष विद्या से अपने आप को परखो कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, अपने आप को परखो। किसी और के बारे में आपको लिखने को कहा तो तुरंत 10 पेज लिख के दोगे, और खुद के बारे में कहा तो याद नहीं होगा कि मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। मना इससे सिद्ध होता है कि आप बाह्य मुखी हो, आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, अपने आप को कभी समझा ही नहीं। यह समझने की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा पूछ रहे, आप ज्योतिष बनकर हरेक को परख सकते हो? जिसने खुद को परखा है वही दूसरों को परख सकता है, क्योंकि परखने की विद्या खुद से शुरू होती है। इसमें मत जाइए कि दूसरों को परखना है, समझ की बात है। दूसरे ने बनाया हुआ भोजन उसमें नुक्स निकालना आसान है, बहुत आसान है, इसमें नमक कम है, उसमें मिर्ची कम है, ये अच्छा नहीं बना। कभी आपने भोजन बनाया है क्या? भोजन बनाने वाले को परख होती है कि भोजन कैसा होता है, खाने वाले को परख नहीं होती, खाने वाला अपनी स्थिति में नहीं होता। जब तक आप बनाना नहीं जानते हो ना, तब तक दूसरों के भोजन में नुक्स मत निकालो, कमियां मत निकालो। किसी को कहा ये सब्जी बनाओ, आसान है, वो बना देगा और आप कहेंगे कि ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना। आप बना के देखो, कभी जीवन में बनाई है क्या? बस दूसरों में कमी देखते गए हैं, यह चीज ठीक नहीं, वह चीज ठीक नहीं है, आपके मुख से शोभा नहीं देता। जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, वह खाने के बारे में, भोजन के बारे में बिल्कुल बात ना करे दूसरों ने बनाए हुए भोजन के बारे में। फिर वो आपकी माता ने बनाया, युगल ने बनाया, पिता ने बनाया, किसी ने भी बनाया, बहन ने बनाया, भाई ने बनाया, नुक्स मत निकालना। बनाने का तो पता नहीं है, बस कमी निकालने में माहिर है। आज इसमें मजा नहीं आया, ये अच्छा नहीं बना, बना के तो दिखाओ, देखते हैं आपका कैसे बनता है, कितना अच्छा बनता है। उसी प्रकार है यह आत्मा है ना, इतने सालों से ज्ञान में चल रही है, आत्मिक स्थिति का पता नहीं है इनका, पता नहीं कब यह योग करते हैं, कभी हमने सेंटर पर आते देखा नहीं है, कभी सेवा में देखा नहीं है। जितनी बातें आप दूसरों के बारे में कहते हो, वह सारी बातें पहले खुद में चेक करो। खुद में अगर वह बातें सब ठीक है तो ही, अगर बाबा की श्रीमत है तो, दूसरों में चेक करो, वरना दूसरों को बिल्कुल मत देखो कि कौन कैसा है। दूसरों को देखना बहुत आसान है, बाबा ने बहुत बार कहा है कि जो कमियां आपको दूसरों के अंदर दिखती है, कहीं न कहीं भल अंश रूप में ही सही, लेकिन आपके अंदर है, इसीलिए दूसरों के अंदर दिख रही है। तो अपने को चेक करना कि वह कमियां कहीं आपके अंदर तो नहीं है, चेक करना। जो अंदर से सुंदर है उसको यह सारा संसार सुंदर लगेगा, यह सारा ड्रामा सुंदर लगेगा। जो अंदर से विपरीत है उसे ड्रामा भी विपरीत लगेगा, संसार भी विपरीत लगेगा, क्योंकि कमी बाहर नहीं है, कमी अंदर है। बहुत बार बच्चे कमी बाहर देखते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वह अंदर है। तो बाबा जो कहते हैं, आप ज्योतिष बनकर हरेक को परख सकते हो, हरेक में आप भी आते हो, इसको ध्यान में रखना, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना आप, कि उसमें आप भी आते हो, और न सिर्फ आप आते हो, पहले आप आते हो। तो पहले अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, इस विश्व में, इस ड्रामा में किसी को भी, किसी के भी बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हो तो आपको अधिकार सिर्फ खुद के बारे में बात करने का है, किसी और के बारे में बात करने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि हरेक को जो मिला है वो उसका पार्ट है, और वह ड्रामा ने दिया है। आपको अगर बात करना है तो अपने बारे में बात करो, समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने को परखो, अपने को परखो। जिसने अपने को परखा उसी ने विश्व कल्याण किया। कहते हैं ना कि दुनिया का सारा अभ्यास किया, शास्त्रों में वर्णन है कि दुनिया को जाना, दुनिया को समझा, हर दिशा को समझा, हर देवता को समझा, लेकिन खुद को समझना ही रह गया। तो क्या मतलब है उस अभ्यास का? आपके पास जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छा है, पर खुद का नॉलेज बिल्कुल नहीं है कि सूरज कहां से उगता है, कहां डूबता है। सब नॉलेज आपके पास है, लहरें कैसे उठती है समंदर की, आकाश में क्या हो रहा है, पाताल में क्या हो रहा है, सब नॉलेज है। सारे देवी देवताओं के कर्म, उनकी शक्तियां, सब पता है आपको, पर खुद का नॉलेज कुछ नहीं है, तो उसे अज्ञानी कहा जाता है। इस दुनिया में अज्ञानी कौन है जो खुद के बारे में नहीं जानता, और ज्ञानी कौन है जो खुद के बारे में जानता है, जो दूसरों के बारे में जानता है उसे ज्ञानी नहीं कह सकते। वह तो बाह्य ज्ञानी हुआ, वह कोई भी ले सकता है ज्ञान, क्योंकि वह बाहर है, किसी से भी मिल सकता है, लेकिन खुद का ज्ञान अंदर है। इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान योग की ज्योतिषी से पहले अपने आप को परखो, खुद की जन्मपत्री बनाओ, खुद का भविष्य देखो, खुद का वर्तमान देखो इस ज्ञान योग की ज्योतिषी से। इस ज्ञान योग में चलने वाले जो बच्चे हैं, जो दूसरों की चर्चा में समय गवाते हैं, अभी उनकी गति जो होगी ड्रामा जाने। क्या मिलेगा आपको दूसरों के बारे में चर्चा करके? आप कितनी भी चर्चा करो, वो वही करेंगे जो उनके अंदर पार्ट नूंदा हुआ है, फिर कोई भी हो दुनिया का। सबसे वही होगा जो नूंदा हुआ है। ब्रह्मा बाबा हो, मम्मा हो, सभी हो, सभी वही पार्ट बजाएंगे जो उनके अंदर नूंद है। तो उनकी चर्चा करके मिलेगा क्या? बाबा हमेशा कहते हैं बाबा बाबा मम्मा मम्मा करते नहीं रहना, उनके जैसा बनना। तो क्या अपने आप को आप परख सकते हो? चेक करो। बहुत गई थोड़ी रही, अभी तो जागो, जागना आपके हाथ में है। अब खुद ही खुद को जगाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि अगर हम जग गए, आत्मिक स्थिति में आ गए, तो हम यह जो विपरीत कर रहे हैं, जिससे हमें विपरीत आनंद मिलता है, वह हमारा बंद हो जाएगा। बहुत बार बच्चे कंबाइंड रूप में बाबा के साथ भोजन नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन का स्वाद नहीं आएगा। यह जानते हैं सभी कि जब भी बाबा के साथ कंबाइंड रहकर भोजन करते हैं, भोजन का कोई स्वाद नहीं आता, बस पेट भर जाता है, शरीर को जितना आवश्यक है शरीर में चला जाता है। तो आपका आनंद, आसुरी आनंद, बाजू में चला गया। इसलिए आपको डर है कि अगर आत्मिक स्थिति में आ गए, बाबा के साथ कंबाइंड रहना शुरू कर दिया, तो हम यह जो आनंद ले रहे हैं वह नहीं ले पाएंगे। इसलिए बच्चे उस तरीके से नहीं चलते जैसे बाप कह रहा है, क्योंकि उन्हें मायावी आनंद चाहिए, बाबा का आनंद नहीं चाहिए। नहीं तो बाबा ने आदि से श्रीमत दी है कि हर निवाला क्या, हर निवाले का हर दाना मेरी याद में खाओ, पर बच्चे करते नहीं। क्योंकि उन्हें खाने की फीलिंग नहीं आती ना। समझ की बात है बच्चों के लिए। हर कर्म, कोई भी हर कर्म आप जब बाबा के साथ कंबाइंड होके करते हो तो आप उस कर्म से न्यारे और प्यारे बन जाते हो, पर आपको यह बनना नहीं है इसलिए आप करते नहीं हो, क्योंकि आप आसुरी आनंद में फंसे हुए हो, मायावी आनंद में फंसे हुए हो, इसलिए आपको कहना करना नहीं है। कभी बाबा के साथ कंबाइंड रहकर नींद ली है? आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि आपको आपके हिसाब से नींद चाहिए, 8 घंटा 10 घंटा 6 घंटा। बाबा के साथ कंबाइंड रहो तो 4-2 घंटे में भी नींद कंप्लीट हो जाएगी, पर आपको लगता है कंप्लीट नहीं हुई। किसने कहा? समझ की बात है बच्चों के लिए। नींद भी एक शक्ति है बाबा की, जागृति भी एक शक्ति है बाबा की। अगर बाबा है तो बैलेंस है दोनों में भी, अगर बाबा नहीं है तो बैलेंस नहीं होगा। इसलिए चेक करो हर कर्म में, अपने को परखो। बहुत बार आप कुछ पीते हो, कुछ खाते हो, ध्यान से देखो कौन खा रहा है कौन पी रहा है। कहीं आपके अंदर असुर तो नहीं बैठा हुआ, कोई कोई माया तो नहीं बैठी जो खुद खा रही है, जो खुद पी रही है, जिसे यह दुनिया का खाना, दुनिया का भोजन बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। चेक करो, चेक करो। अगर माया बैठी है तो उसे मायावी भोजन अच्छा लगेगा, असुर बैठा है तो उसे आसुरी भोजन अच्छा लगेगा। बना मेरी चॉइस, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। अगर आप बैठे हो और आपके साथ बाबा हो तो यही संकल्प चलेगा, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, जो तू खिलाए तेरी मर्जी। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए अपने को परखो, यह ज्ञान मिला है खुद को परखने के लिए, इस बात को ध्यान में रखना। और खुद को परख कर बाप जैसे बनाना चाहता है वैसे बनते चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और समय प्रति समय बाप जो शिक्षाएं दे रहा है उसको धारण करते चलना। धारण करने का एक ही उपाय है, विचार सागर मंथन। जो बच्चे बाप ने जो सुनाया है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, भले 1 सेकेंड 1 मिनट 1 घंटा जो भी आप कर सको, वही बच्चे बाप को प्रिय है और वही बच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। बाकी किसके हैं आप जानते हो, तो आप चेक करना अपने आप को। अच्छा, ओम शांति।